वैसे तो किसी कलाकार का तारुफ यानी कि परिचय करवाया नहीं जाता, क्योंकि कलाकार अपना परिचय खुद आप होता है या फिर उसकी कला। और जहां खुर्शीद पागल साहब की बात हो तो क्या कहेंगे हम और हमारी क्या सुनेंगे आप। आपके दिल बेताब हो रहे होंगे सिर्फ खुर्शीद पागल के लिए, और भाई क्यों ना हो, क्योंकि खुर्शीद पागल साहब इजी ऐसी हैं। तो आइए अब आपकी बढ़ती हुई बेकरारी को करार देने के लिए दावा देते हैं जनाब खुर्शीद पागल साहब को। जी हाँ, तशरीफ लाइए जनाब खुर्शीद पागल साहब।
नौजवानों और नौजवानियों, सज्जनों और सजनियों तथा कैसेट सुनने वाले सभी जीव जंतुओं, आइए एक बार फिर आप लोगों को हंसाने के लिए मैं लिए चलता हूँ हंसी और ठहाकों की महफिल में। दोस्तों, इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। ज़रा सोचिए कि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मोटर पार्ट्स की तरह इंसान के शरीर के अंग भी नट बोल्ट खोलकर बदल दिए जाते तो कैसा होता। तो आइए आज हम आप देखते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक महान कलाकार यानी कि शक्ति कपूर साहब जी ने एक ऐसी ही गैराज खोल रखी है जिसमें मोटर पार्ट्स की तरह इंसानों के अंग बदले जाते हैं। आज हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की टांगों में दर्द है तो आते हैं और शक्ति कपूर से अपने टांगों की दर्द की शिकायत लेकर कहते हैं।
हवा ये शक्ति, अरे भाई ये सला टांग में रोज दर्द होता है। अरे तुम इसको देखो, नहीं समझता है तुम, इसको देखो तुम मेरे टांग में क्या होता है भाई। कभी जिसको करती है तो कभी रॉक एंड रोल करती है।
अरे भाई अमित, एक बात बता, जब तू इतने दिनों से डांस कर रहा है तो अभी तक आया क्यों नहीं? ठीक है, तेरी टांग टेबल पे रख, नट खोलता हूँ। अमित, तेरे टांग में का कंडेंसर उड़ गया है और स्प्रिंग भी थोड़े लूज हो गए हैं। ऐसा कर, कल लेके जाना, आज मैं बना दूंगा।
अमिताभ बच्चन के जाने के थोड़ी देर बाद ही आज के जाने माने विलेन सदाशिव अमरापुरकर भी आते हैं और अपने हाथ में दर्द की तकलीफ बताते हैं और उसके बाद शक्ति कपूर उनसे बोलते हैं।
अबे कालिये, तेरा हाथ सुधारने के लिए क्या मेरा ही गैरेज मिला था? ठीक है, अभी अभी लंबू ने अपनी टांग दे के गया है, तेरा हाथ भी रख दे, कल तक सुधर जाएगा।
दूसरे दिन आकर अमिताभ बच्चन अपनी टांग और सदाशिव अमरापुरकर अपना हाथ ले जाते हैं और जाने के थोड़ी देर बाद ही अमिताभ बच्चन फिर वापस आते हैं और शक्ति से कहते हैं।
अरे शक्ति, अरे तुझे कैसा बनाया है? अरे साला जमीन पे नहीं टिकता ही पैर। अरे तुम गलत तो नहीं लगा दिया भाई?
क्या कह रहा है तू? मैं ऐसा काम कभी कर सकता हूँ क्या? जरा सोच। अच्छा क्या बताया तूने? टांग तेरे टिक नहीं रही? अरे यार सॉरी, और टांग शायद नौकरी की लग गई है।
अमिताभ बच्चन के जाने के थोड़ी ही देर बाद सदाशिव अमरापुरकर भी भागे भागे आते हैं।
गोरा बना दिया तेरा हाथ? अभी मेरे गैराज में? वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बोला तूने, लेकिन तुझे नहीं मालूम और जो हाथ लगा हुआ है मालूम है किसका है? ईमान धर्मन का है, वो तोड़ डालेगा, दे दो उसका हाथ वापस।
और इसी तरह से उत्पल दत्त साहब ने भी अपना सर बनाने को दिया था, वो भी वापस लौट कर आते हैं और शक्ति कपूर से कहते हैं।
बेटा शक्ति, क्या बना दिया है तूने मेरे सर को? क्या कहते हैं उसे, हाँ चक्कर आते हैं और मैं गिर पड़ता हूँ कभी कभी। एक एक आदमी चार चार दिखाई देते हैं, क्या बात है बेटा?
एक एक आदमी चार चार दिखते हैं अंकल, शायद आपका सर बदल गया है, किस्तों का डाल दिया हूँ, तभी आपको चार चार नजर आ रहे हैं।
दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जिसे समाज में हम और आप सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं पहले की शादियों की बात नहीं करता, आइए आपको मैं आज के इस मॉडर्न युग की एक मॉडर्न दुल्हन से मिलाता हूँ जो अपनी शादी के बाद विदा हो रही हैं और विदा होते समय अपने माँ के कंधे से लगकर रो रही हैं और रोते हुए देखिए क्या कह रही हैं।
मम्मी मम्मी मुझे रोक लीजिए मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम लोग के बिना नहीं रह सकती मम्मी।
दुल्हन की बात सुनकर दुल्हन की माँ बोलती हैं,
अरे जा जल्दी चली जा, जल्दी जल्दी चली जा तो सुमन का नंबर आए।
और आखिर में दुल्हन माँ से आगे बढ़कर छोटी बहन सुमन के गले से लगती है, लिपट कर रोती है और बोलती है,
सुमन तुम ही समझाओ ना माँ को कि मुझे रोक ले, मुझे तुम लोग के बिना जरा सा भी नहीं अच्छा लगेगा। सुमन
अपने दीदी से बोलती है,
अरे दीदी जाओ ना, कलुआ छेड़ता तो उससे तो अच्छा ही है।
आखिर में दुल्हन ने देखा कि माँ और छोटी बहन दोनों से काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो अपने पिताजी के कंधे से लिपट कर रोती हैं और रोते हुए बोलती हैं,
पिताजी पिताजी आप ही मुझे रोक लीजिए पिताजी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती पिताजी।
अरे बेटी जा चली जा, मात्र 2000 तिलक में बुद्धू समान पति कहाँ रोज मिलता है, जा जा चली जा।
तो आखिर दुल्हन देखा कि पिताजी ने भी हमारा काम नहीं किया, तो अपने बड़े भाई के कंधे से लगकर रोती है और उनके बड़े भाई जो अपने इलाके के एक जाने माने बदमाशों में से थे, अपनी मोटी मोटी मूछों पर ताव देकर खड़े होते हैं और जाके कंधे से लगकर रोती हैं और बोलती हैं,
भैया भैया मुझे रोक लीजिए भैया, मैं नहीं जाना चाहती भैया, अब आप ही का सहारा बचा है भैया।
अरे बहना जा जा बहना, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं अभी जीजा को समझा देता हूँ।
ये कहते हुए अपने होने वाले दुबले पतले जीजा जी के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं,
हे जीजा, अरे मालूम है ना कौन है, हमार बहन है, कौनो तकलीफ ना हो चाहिए, अरे फिर तो समझे रहे हो।
अरे भैया नहीं भैया, कौनो तकलीफ ना हो भैया, कैसे बात करते हैं भैया।
हाँ नहीं इलाके में तो मालूम है ना कितना है हमारा नाम, तुम वहीं तक पता चली, क्या समझे हो।
अरे भैया समझ गए भैया समझ गए, आपके बहन तो हमार बहन भैया, हम समझ गए भैया समझ गए,
शुक्रिया। खैर विदाई होती है और दुल्हन को लेकर के लड़के वाले अपने घर आते हैं। कुछ दिन के बाद दुल्हन खाना बनाती है और खाने में मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं। पति महाशय मिर्चों से भरा खाना खाते हैं, आँखों से उनके आंसू बह रहे हैं, लेकिन अपने बड़े साले के डर से पत्नी को कुछ नहीं बोलते और आंसू गिरा जा रहा है, रोते हुए खाना खाए जा रहे हैं। उनके गिरते हुए आंसू को देखकर पत्नी उनसे पूछती है,
क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या?
नहीं खाना तो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है।
तो फिर ये आंसू क्यों निकल रहे हैं?
ये तो खुशी के आंसू हैं कि जो तुम जैसी गुणवान पत्नी मुझे मिली है, जो इतने अच्छे पकवान बना लेती है।
तो और खाइए ना।
नहीं मुझसे ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों आइए मैं आपको अपने शहर मिर्ज़ापुर लिए चलता हूँ जो कि हमारे यूपी का एक छोटा सा ज़िला है। हमारे मिर्ज़ापुर शहर में कभी कर्फ्यू नहीं लगी है, ये वहाँ का इतिहास था, लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद हमारे शहर मिर्ज़ापुर में भी कर्फ्यू लगा। और पहली बार कर्फ्यू लगने की वजह से बहुत से लोगों ने जिन्होंने कर्फ्यू नहीं देखा था, जिसमें कि मैं भी हूँ, तो बहुत से लोगों ने कर्फ्यू को देखा, और जब कर्फ्यू देखा ही नहीं था तो उसका मतलब क्या समझते। उसी कर्फ्यू के दौरान एक सज्जन रात के समय अपने घर के बाहर, गर्मी का समय था, चारपाई निकाल कर लेटे हैं और लेट करके पैर पर पैर रख करके ये गाना गा रहे थे,
अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहां आवाज दे तुमको कहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो।
इतने में उधर से पांच छह सिपाहियों को लेकर इंस्पेक्टर जी कर्फ्यू के दौरान गश्त पर निकले। उन्होंने देखा कि कर्फ्यू के समय ये रात का समय और अकेले बाहर घर के चारपाई लगाकर लेट करके ये महाशय गाना गा रहे हैं, तो बड़ी तेज में नाराज होते हुए उनके पास पहुंच कर तलाक हंटर एक उसको जड़ा और बोले,
अकेले हो, चलो हम सब आ गए हैं, चलो तुमको बंदर करते हैं।
अरे हुजूर, अरे माई बाप, अरे हमारा का गलती हुआ साहब, हम कौन गलती कर दिया?
तो गलती के बच्चे, पूरे मिर्जापुर शहर में 6 दिन से कर्फ्यू लगा है और तुम अभी जब पता ही नहीं तुम्हें, बोलते हो कि क्या गलती किया है, घर के बाहर चारपाई लगा करके लेट के गाना गा रहे हो, चलो जेल में अभी तुमको बंद करता हूँ।
अरे साहब ऐसा न करो साहब, गरीब आदमी है।
चलो सिपाही हो, पकड़ो इसे ले चलो।
अच्छा साहब, अच्छा हुजूर, अच्छा माई बाप, कहीं सा रुक जाए, अपन चारपाइया तो अंदर कह दी,
जाओ जल्दी रखो।
और वो सज्जन जो बाहर लेटे हुए थे चारपाई लेकर गए, अंदर रखा और दरवाजा बंद कर लिया। खड़े खड़े 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देखें तो अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर में भोर का समय हुआ और सुबह हो गया, तो देखा ये सज्जन अपने छत पर खड़े हुए गुल मंजन कर रहे थे। इंस्पेक्टर नीचे से नाराज होता हुआ गुस्से में चिल्लाता है,
अरे बदतमीज, नीचे आओ, हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाकर ऊपर खड़े हो, जल्दी चलो।
तो वो ऊपर से महाशय बोलते हैं,
कहाँ चली, देखा नहीं है पूरे शहर में 6 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ, कर्फ्यू में हम कहीं ना जावे, जा बाद में मिले।
धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, एक बार एक सज्जन ने अपने नौकर से, काफी अमीर थे, तो उन्होंने अपने एक नौकर से जो कि बिल्कुल देहाती और जाहिल गंवार किस्म का था, आवाज लगा कर बुलाया, रामू, ओ रामू, अरे यहाँ ना।
कहा साहब, अभी आता हूँ,
दौड़ता हुआ आया।
कहा साहब,
रामू देख, आजकल के युग में, आजकल के जमाने में बातें जो बढ़ा चढ़ा कर बताता है उसकी इज्जत होती है, समाज में उसका सम्मान होता है, उसको लोग बहुत बड़ा जानते हैं। तो आपसे ऐसा करना कि मान ले कोई आया है मुझसे मिलने के लिए और मैं तुझसे पूछूंगा कि कौन है, तो तुम उससे आके कहेगा कि साहब फलाने हैं, तो मैं उनको अंदर बुलवाऊंगा, फिर मैं उनके सामने तुझे आवाज लगा के कहूंगा, रामू जरा मेरा अटैची ले आना, तो तू पूछना कौन सी अटैची, लाल वाली कि पीली वाली कि नीली वाली, तो इससे आने वाला मेहमान सोचेगा कि इनके पास बहुत तरह की अटैचियां हैं। मेरा मतलब समझ गया है ना, मैं जब भी तुझसे कुछ पूछूं तो उसे तू बढ़ा चढ़ा के पूछना।
हाँ हुजूर,
हाँ साहब, कुल समझ गया, मैं सब समझ गया। तभी बाहर से कॉल बेल की घंटी बजी, ट्रिन 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 ट्रिन,
रामू रामू तैयार हो जा, चल जल्दी देख बाहर कौन है।
रामू आया, उसने दरवाजा खोला, बाहर से एक सज्जन अंदर आते हैं और उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई,
रामू, ओ रामू, अभी आया साहब।
रामू दौड़ता दौड़ता आया,
क्या है साहब? अरे रामू, ओ मेरा जूता ले आना। अच्छा साहब, कौन सा जूता लाऊं, एक्शन का लाऊं, बाटा का लाऊं कि लखानी का लाऊं? और रामू, अरे कोई भी ले आ, जल्दी से ले आ।
तो लखानी का जूता लाकर रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं,
रामू, ओ रामू, हाँ साहब, अरे रामू, पूछा मेरी गाड़ी बाहर निकाल दे। कौन सी गाड़ी साहब? मारुति निकालूं, कंटेसा निकालूं कि सीलो निकालूं? अरे मारुति निकाल दे, मारुति पास में ही तो जाना है।
फिर थोड़ी देर के बाद आवाज लगाते हैं,
रामू, ओ रामू, हाँ साहब, अब क्या है? अरे रामू, मलकिन से बोल देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा साहब, बोल दूंगा, पर ये बताइए कौन सी मलकिन से बोलूंगा, इलाहाबाद वाली, बनारस वाली कि मिर्जापुर वाली?
फिर उसके बाद
जब बाहर निकलते हैं तो बाहर से आवाज लगाते हैं, ओ रामू, ओ पिताजी आएंगे ना, तुमसे बोल देना कि मैं शाम को थोड़ा देर से आऊंगा। अच्छा साहब, बोल दूंगा, लेकिन ये तो बताते जाइए कौन वाले पिताजी, हैदराबाद वाले, इलाहाबाद वाले कि मुरादाबाद वाले। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, आइए मैं आपकी मुलाकात अपने मिर्ज़ापुर के मिस्टर बीनू से कराता हूँ, जो बात करते हैं तो हकला जाते हैं। ये हमारे ग्रुप के साउंड ऑपरेटर हैं। तो देखिए, एक बार इनके घर से कहा गया, मेरा मतलब इनके घरवाले ने कहा कि जाओ 4 मीटर मार्किन ले आओ। तो हमारे बीनू महाशय मार्केट में आते हैं कपड़े की दुकान पे, और दुकानदार से 4 मीटर मार्किन मांगते हैं। इत्तेफाक की बात कि दुकानदार उनसे भी ज़्यादा हकला है। तो देखिए क्या मामला होता है वहाँ पर। बीनू जी दुकानदार के पास पहुँचते हैं कपड़े की दुकान पर, और उससे 4 मीटर मार्किन मांगते हैं।
वो 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 चार मीटर मार्किन किन दे दो।
दुकानदार ने अपने नौकर को वहीं से आवाज लगाई,
राजू मार।
कीन नहीं निकला। राजू ने सोचा कि कह रहे हैं कि चोर है मार। उसने कपड़े की रूल उठाया, दनादन बीनू को पीटना शुरू कर दिया। जब देखा दुकानदार ने कि अरे ये तो कस्टमर को पीटने लगा, तो जल्दी से अपने नौकर को रोकता है,
नहीं 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 राजू, नहीं नहीं, चार मीटर मार।
फिर कीन पर फंस गए। तो राजू ने सोचा कि कह रहे हैं कि रूल नहीं, मीटर उठा के 4 मीटर मार। और उसने रूल एक तरफ फेंका, मीटर उठाया, धनादन 4 मीटर हमारे बीनू महाशय को जड़ दिया। तो बीनू जी वहाँ से भागे कि यार अभी जब ये चादर लेते लेते, मेरा मतलब कि मैं मार्किन लेते ही लेते ये हाल है, अभी कुछ और लेना होगा तो क्या होगा। तभी रास्ते में मैं मिला तो मैंने क्या, यार बीनू क्या बात है, भाई टेढ़े मेढ़े हो।
अरे यार गए थे चार मीटर मार्किन लेने, साले ने मारा। उई।
अरे क्या हुआ यार बीनू, कैसे मार दिया?
अरे यार अच्छा हुआ कि काटन नहीं मांगा, नहीं तो काट ही डालता।
धन्यवाद। और आइए इसी कड़ी में आपको मैं आगे लिए चलता हूं। एक बार होता क्या है कि एक सज्जन सड़क पर चले जा रहे होते हैं, और सामने से एक दूसरे सज्जन आते हैं। तो ये सज्जन अपने हाथ में रिस्ट वॉच लगाए रहते हैं, और सामने वाले सज्जन के हाथ में घड़ी नहीं होती है, उन्हें टाइम पूछना होता है। तो इनको रोक कर टाइम पूछते हैं, भाई साहब आपकी घड़ी में क्या बजा है? उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा और देख कर उनसे कहा, 3 मिनट। भाई साहब कितने बज के? अब मैंने कह दिया ना 3 मिनट। अरे भाई साहब कितने बज के 3 मिनट? अरे मैंने कह दिया ना 3 मिनट। और भाई साहब अरे कितने बज कर 3 मिनट? क्यों बताऊं? इतनी देर में भीड़ लग जाती है। तो होता क्या है कि जो सज्जन घड़ी लगाए हैं वो काफी दूर तक बातें सोचते हैं, बड़े दूरदर्शी हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे भाई अगर ये टाइम पूछ ही रहे हैं और आपने बता ही दिया तो इनको बता देती कि कितने बजकर कितने मिनट, आप सिर्फ बजकर 3 मिनट उनको क्या समझ में आए। तो घड़ी वाले सज्जन ने लोगों को कहा, भाई आपसे क्या मतलब है, मैं इनको कैसे बता दूं कितने बजकर इतने मिनट? अभी मैं इनको बता दूं कि इतने बजकर इतने मिनट तो फिर ये मुझसे पूछेंगे कि आपकी घड़ी बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली? मैं इनको बताऊंगा कि वहां से ली। इन्होंने पूछा ये कि मगर कितने का है, मैं इनको बता दिया कि इतने का है। फिर ये मुझसे पूछेंगे, अच्छा भाई साहब आपका नाम क्या है, मैं इनको अपना नाम बताऊंगा। फिर ये मुझसे पूछेंगे आप रहते कहाँ हैं, मैं इनको अपने घर का एड्रेस दूंगा, फिर ये किसी दिन मेरे घर पर चले आएंगे, दरवाजे की घंटी बजाएंगे, मेरी लड़की आकर दरवाजा खोलेगी, ये मेरे घर के अंदर आएंगे, मैं इनको चाय पेश करूंगा, ये मुझसे पूछेंगे कि भाई किसकी लड़की है, मैं बोलूंगा कि मेरी लड़की है, ये मुझसे बोलेंगे यार बड़ी सुंदर है, मैं बोलूंगा भाई मेरी बेटी है, सुंदर तो होगी, फिर ये मुझसे कहेंगे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, यार मैं ऐसे नालायक से शादी करूंगा जिसके पास टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए मैं एक छोटे से बच्चे से आपकी मुलाकात कराता हूँ। एक बार वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर मास्टर साहब, और मास्टर साहब नाक के बल बोलते हैं, तो बच्चे से कहते हैं मैं बेटा कन्नू, बेटा काम करके नाए हो?
नहीं गुरुजी।
तुम बेटा बहुत शरारती हो गए हो, अच्छा ऐसा करना कि कल जरूर से काम करके आना।
गुरुजी मम्मी मुझको घर का काम नहीं करने देती।
अबे मैं घर का काम वो वाला काम नहीं, मैं स्कूल का काम जो तुझको देता हूँ घर पे करने के लिए पूछ रहा हूँ।
अच्छा गुरुजी मैं करके ले आऊंगा।
दूसरे दिन बच्चा करता क्या है, काम नहीं, मेरा मतलब काम नहीं करता, फिर शादी कापी लेकर चला जाता है। मास्टर साहब ने देखा उसकी कापी शादी है, फिर उसके ऊपर नाराज होते हुए बोलते हैं अबे हराम जादे कहीं के कमीने उल्लू के पत्थे, मैंने तुझको कल कितना समझाया दादा कि काम करके ले आना, फिर भी काम करके नहीं लाए।
गुरु जी मैं भूल गया था।
अरे छाने कहीं के भूल जाना, ठीक है रुका जाओ, आज मैं आऊँगा तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा। बच्चा घर पे आया, उसकी समझ में नहीं आया कि मास्टर साहब ने क्या क्या उसे बना डाला, हरामजादा कमीना उल्लू का पट्टा। तो उसने सोचा कि चलो शाम को पापा से पूछेंगे, और उनके पापा की पेमेंट रुकी हुई थी और घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, तो बड़े परेशान थे यार, आर्थिक तंगी खुद ही चल रही है, महीने का आखिरी दिन चल रहा है, उसके बाद ये मेहमान भी उसी पे चले आ रहे हैं। तो ऑफिस से आते हैं और गले से नेकटाई खोलते हुए जैसे ही बैठने को हुए सोफे पर कि बच्चा शुरू हो जाता है इनसे पूछना, पापा 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 ये हरामजादा किसको कहते हैं? उनके पापा खिसियाए हुए तो थे ही, गुस्से में बोलते हैं
अरे मेहमान को कहते हैं हरामजादा, चुप रहो।
अच्छा पापा मेहमान को कहते हैं, पापा कमीना किसको कहते हैं?
उसके पापा सोफे पर बैठने जा रहे थे तभी उसने ये सवाल कर दिया, गुस्से से दोनों हाथ सोफे पर झल्ला करके मारते हुए खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं
अबे इस सोफे को कहते हैं कमीना, भाग यहाँ से, मेरा खोपड़ी मत खा, भाग इधर से।
अच्छा पापा एक सवाल और बता दीजिए, वो मास्टर जी ने कहा था उल्लू का पट्टा किसको कहते हैं?
अबे तेरे बाप को कहते हैं, भाग यहाँ से।
बच्चा चला गया, उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने सब सही से बता दिया। शाम हुई, उनके फादर यानी इनके पापा जी अंदर बाथरूम में नहा रहे थे, बाहर से खटखट की आवाज़ हुई, बच्चा बाहर आया तो देखा मास्टर जी उसके आए हुए हैं, तो बच्चा कहता है
अरे आप आइए आइए हरामजादे, बैठिए कमीने पर, अभी बुलाता हूँ अपने उल्लू के पट्टे को।
शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों इस बार हमारा देश आज़ाद हुए यानी कि 15 अगस्त को पूरे 50 वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मनाया, और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे एक नेताजी जिन्हें भाषण देना था, तो मिर्ज़ापुर के हमारे नेताजी, और इन्हें सुबह के समय 15 अगस्त के अवसर पर घंटाघर में झंडा लहराना था और भाषण देना था, तो उन्होंने अपने नौकर को समझा दिया यार मिठाई वालों को जाकर आर्डर दिया और सुबह सुबह जाकर के मेरी तरफ से जितने भी हमारे मिर्ज़ापुर के लोग वहाँ इकट्ठे रहेंगे उन सबों को मेरी तरफ से मिष्ठान वितरण कर देना, और बिल्कुल 6 बजे जाकर के झंडा वगैरह सब उसमें फूल उल लगा करके टांग देना, 7 बजे झंडा फहराना होगा। नौकर ने दौड़ धूप करके सब काम कर दिया, मिठाई वालों को ऑर्डर दे दिया, मिठाई बन गई, बन के आ गया, तैयार हो गया। उसके बाद जब ये रात को थक हार करके जैसे ही सोने को हुआ और चारपाई पर लेटा कि नौकर को याद आया कि अरे यार मैंने झंडा नहीं लगाया, झंडा लगाना वो भूल गया था। तो जल्दी से झंडा ढूंढना शुरू करता है, पूरा घर ढूंढ डालता है, उसे झंडा नहीं मिला। तब आखिर में देखा क्या कि अंदर के कमरे में नेताजी की धर्मपत्नी का लहंगा और रंग बिरंगा लहंगा था वही रखा हुआ था, बिल्कुल धुला हुआ साफ। नौकर जल्दी से गया और उसी लहंगों में फूल माला वगैरह जो है डालना था टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया, डाल करके ले जाके उसे झंडे की जगह टांग दिया। सुबह के समय नेताजी घंटाघर में आते हैं 15 अगस्त के अवसर पर भाषण देने के लिए और झंडा फहराने के लिए। तो आए और उन्होंने ऊपर झंडे की तरफ नहीं देखा, मंच पर खड़े हो गए और जैसे ही डोर को खींचा लहंगा खुल गया और लहराने लगा। लहंगे में रखे हुए फूल आकर के नेताजी के ऊपर गिरने लगे। लोगों ने जब ऊपर देखा कि लहंगा, तो तालियां बजाकर हंसने लगे। नेताजी सोच रहे हैं कि ये शायद हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि नेताजी आए हैं और हमारी इज्जत कर रहे हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं। तो नेताजी ने बिना ऊपर देखे ही अपना हाथ ऊपर झंडे की तरफ इशारा करके भाषण देना शुरू किया। तो देखिए क्या भाषण दे रहे हैं।
हमारे मिर्जापुर नगर के वासियों, आज हमारा देश आजाद हुए पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं और ये कहकर उन्होंने ऊपर झंडे की तरफ इशारा किया सिर्फ हाथ से और नीचे देखते हुए, ये हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है। इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने आंदोलन किए, न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और न जाने कितनी जाने गईं, और फिर भी हमने इसे नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा है आज हमारे देश के ऊपर है और हमें इसे ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है। तो आइए आज हम और आप इसके नीचे खड़े होकर ये शपथ लें कि हम जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए। धन्यवाद।
शुक्रिया, शुक्रिया आपके इन भरपूर तालियों का। साथियों, आइए मैं अब आपको एक ऐसे पति महाशय से मिलाता हूँ जो सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं और उनकी सोचने की आदत से परेशान होकर उनकी पत्नी जो कि देखती हैं कि दिन भर बैठ के सोचते रहते हैं, महीने में कहा दो दिन ड्यूटी चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं जाते, तो बहुत परेशान होकर एक दिन वो अपने पति से बोलती हैं,
आज आप ऐसा करिए, सारा काम छोड़ के पहले एक नौकर ढूंढ के लाइए, वो सोचेगा आप आराम से ड्यूटी जाइएगा।
अच्छा भाग्यवान, ठीक है ठीक है, मैं आज ही एक नौकर ढूंढ कर ले आऊँगा। और जाते हैं, शाम को एक नौकर पकड़ कर ले आते हैं और उसे बोलते हैं, हाँ देखो तुम्हें मैं 5,000 रुपये महीने दूंगा और तुम्हारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से 6 बजे तक की होगी, तुम्हें सिर्फ काम ये करना है कि यहाँ आकर दिन भर बैठ कर सोचना है। काम हुजूर, सोचना है का सोचना है, कुछ भी सोचना, लेकिन आकर के यहाँ बैठ के सोचना, मैं 5,000 रुपये महीना दूंगा। 5,000 रुपया महीना और खाली सोचने के लिए? अरे हुजूर, इतने में तो आप कहिए हम अपना पूरा खानदान यहाँ लेके आवे बैठ के सोचें। नहीं नहीं, तुम्हें खानदान लाने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले आना बैठ के सोचना। अच्छा हुजूर, एक बात बताएं कि आप कहाँ काम करे थे, क्यों इससे तुम्हें क्या मतलब है? वैसे मैं रेलवे में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा हुजूर, तब तो आपकी बड़ी लंबी तनख्वाह हुई। हाँ मेरी तनख्वाह यही कोई 3,000 रुपये है। क्या कहें हुजूर, 3,000 बस? अरे आपकी तनख्वाह 3,000, तो हमके 5,000 रुपया कहाँ से देंगे? आज से यही सोचो। आखिर सोचने की आदत से परेशान होते होते होता क्या है कि इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। कभी सब्जी लेने गए तो झोला भूल गए, कभी पार्टी में गए तो पैंट पहनना भूल गए, और एक दिन तो इन्होंने हद ही कर दी। बिल्कुल भीड़ भरे मार्केट में चौराहे पर एक महिला को देखा खड़े हुए
बिल्कुल सामने से कुछ देर उसे निहारा, घूरा, और वो महिला जो कि वास्तव में उनकी धर्मपत्नी थी, तो देखकर कहते हैं, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो उनकी पत्नी बहुत परेशान थी उनके सोचने से और उनके इस लक्कड़पन की आदत से। आखिर में एक दिन गुस्से में आकर के अपने पति से कहती हैं,
आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आज आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा और अपने भूलने की दवा लानी पड़ेगी।
अच्छा भगवान, ठीक है मैं जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ से दवा ले आऊंगा। और कह के शाम को जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब वो क्या है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे कोई दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, ऐसा करिए कि आप मेरी फीस पहले दे दीजिए। खैर उन्होंने फीस पहले दे दी। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ तो आपको ये बीमारी कब से है? तो बोले, कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब? अरे भाई आपको भूलने की बीमारी है ना? ओ हाँ डॉक्टर साहब, भूलने की बीमारी ये मुझे करीब पिछले 2 साल से है। अच्छा ये ठीक है, ये लीजिए ये दवा आप सुबह शाम खाया करिएगा। पर्चा लेकर आते हैं और इनकी आदत होती है ये शाम का खाना अक्सर रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो एक बार ये गए रेस्टोरेंट में खाना खाए, इधर उधर देखा कोई नहीं था, रेस्टोरेंट के 2 चम्मच उठाए जेब में रखा चले आए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज़ जब 2 चम्मच गायब होने लगा तो मैनेजर ने एक दिन एक बैरे को ड्यूटी पे लगाया कि तुम देखो कि चम्मच ले कौन जाता है। जब शाम के समय ये आए और इन्होंने खाना खाया, इधर उधर देखा, 2 चम्मच जेब में रखा, जब चलने के हुए तो बैरा आया, इनको पकड़ लिया और बोला कि साहब यही हैं वो चम्मच जो लेकर जाते हैं। तो मैनेजर उनके ऊपर नाराज़ होते हुए,
शक्ल सूरत से आप किसी शरीफ घराने के लगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे होटल में आते हैं खाना खाने के लिए कि चम्मच चुराने के लिए?
देखिए आप मुझसे फालतू बात मत करिएगा, मैं चम्मच चोर लगता हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था।
डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? कैसे डॉक्टर साहब, क्या कहा था?
उन्होंने जेब में से पर्चा निकाल करके डॉक्टर का मैनेजर के सामने रख दिया जिसमें लिखा था खाने के बाद 2 चम्मच ले लेना। आखिर में आते हैं शुक्रिया, तो आगे जाते हैं घर में, दरवाज़ा खोल कर अंदर आते हैं, अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाते हैं, शांति शांति ओ शांति। नौकरानी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती, उनकी धमपत्नी उनकी आवाज़ सुन लेती हैं तो बोलती हैं,
क्या है जी?
अरे भाग्यवान मैं तुम्हें नहीं, मैं नौकरानी शांति को बुला रहा हूँ। शांति ओ शांति शांति।
अरे क्या है बाबा, बोलिए ना, कुछ चाहिए क्या?
मैं तुमको कैसे बताऊं, अरे वो क्या है ना कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि खाना खा के दवा पी के शांति के साथ सो जाना। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मिर्ज़ापुर के एक पहलवान जी के घर, जहाँ उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उन्हें सांत्वना देने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हैं। एक तरफ सिर्फ महिलाएं, एक तरफ सिर्फ बूढ़े, एक तरफ बच्चे और एक तरफ नौजवान, इस तरह से सारे लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित थे हमारे वो पहलवान जी, लोग उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं लेकिन पहलवान जी रोए जा रहे हैं। तो देखिए लोग उन्हें किस तरह से ढाढ़स बंधा रहे हैं और पहलवान जी रोते हुए क्या कह रहे हैं। अरे भाई
आप बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए, ऊपर वाले ने सभी को पैदा किया है, एक दिन उठा लेते हैं, सब्र कीजिए पहलवान जी, सब्र कीजिए। हम लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ है, हम लोग भी आपके दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं, शरीक हैं, आप जरा सा भी चिंता न करें। अरे कैसे चिंता न करूं शर्मा जी। मुझे पत्नी के मरने का दुख नहीं है।
शर्मा जी घबराए कि यार पत्नी के मरने का दुख नहीं है, तब फिर क्यों रो रहे हैं?
यार शर्मा मुझे पत्नी के मरने का जरा भी दुख नहीं है।
अरे अरे आपको अगर पत्नी के मरने का दुख नहीं है तो फिर आप रो क्यों रहे हैं?
अरे शर्मा जी 10 साल पहले जब मेरा बाप मरा था तो इस बुढ़े ने कहा था कि बेटा चुप हो जा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। मैं मान गया था शर्मा जी। पिछले 5 साल पहले जब मेरी माँ मरी थी तो इस बुढ़ी ने कहा था कि चुप हो जा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन आज आज मेरी पत्नी मरी, मेरी बीवी मर गई, इतनी यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, इतनी में से कोई भी नहीं कहता कि चुप हो जाइए, मैं आपकी बीवी हूँ।
शुक्रिया शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक बार होता क्या है कि एक बादशाह हैं राजा, और उनके 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो 50वीं वर्षगांठ पर वो एक स्वर्ण जयंती अपनी मनाते हैं, और उसमें अपने यहाँ के जितने भी कैदी, जो पुराने कैदी होते हैं कि 20 साल 10 साल 15 साल के, कि उन सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, तो उनका हुक्म बजा लाया जाता है, और उनके कैद खाने से एक एक करके सभी कैदियों को निकाला जाता है, और बादशाह जी से मिलाते हुए उन कैदियों को छोड़ा जाता है। तो एक एक कैदी करके करीबन 30-40 कैदी निकल चुके। उसके बाद एक बुढ़ा सा काफ़ी जर्जर सा कैदी निकलता है, यही कोई 90-95 साल का। तो बादशाह साहब उनसे पूछते हैं, ओए दादा, ओ तुम कितने दिन से हमारे यहाँ कैद थे? तो बूढ़ा बोलता है,
अरे बचवा का बताई बचवा, हमार तो पूरी जिंदगी तोरे कैद खाने में ही बीत जाए रागता, अरे हमार से नहीं बेटा, तोरे बाई बाप दादा के जमाने से है बचवा।
बादशाह साहब कहते हैं, ओए सिपे सलार, इन्हें ले जाओ और इज्जत के साथ फिर से कैद कर दो, ये हमारे बाप दादा की निशानी है। धन्यवाद। एक बार इंडिया, जापान और रूस, इन तीन जगहों के एक एक व्यक्ति आपस में बैठकर बातें करते हैं, तो रूस और जापान के दोनों गप्पी थे, लेकिन हमारे इंडियन महाशय ये सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो पहले जापान का जो गप्पी था वो अपने जापान की बात बताता है, हमारे यहाँ जहाज बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा, बिल्कुल आसमान से बिल्कुल सट के उड़ता है, एकदम आसमान से। तो बाकी दोनों ने पूछा, क्या आसमान से सट के? अरे बाबा आसमान से सट के? अरे बाबा उससे दो अंगुल नीचे समझ लो। तो जापान वाला बोला, मेरे यहाँ पनडुब्बी जो होती ना समुन्दर में, बिल्कुल एकदम समुन्दर की तली से लग करके जाती है, बिल्कुल तली से छुआते हुए, तली से, अरे यार दो अंगुल ऊपर ही समझ लो। फिर इंडियन ने कहा, बस वो मेरे यहाँ लोग नाक से खाना खाते हैं। क्या नाक से? और क्या नाक से खाना खाते हैं? अबे नाक से खाना खाते हैं? अरे यार दो अंगुल नीचे ही समझ लो। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों एक बार हमारे एक मित्र हैं, और बड़े ही प्यारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी, मेरा मतलब कि दाढ़ी नहीं बनवा रहे थे, और करीब 4-5 दिन से कुछ दाढ़ी उनकी बढ़ गई। तो और मित्रों ने उनसे पूछा, यार तू दाढ़ी नहीं बनवा रहा है, क्या बात है, लगता है 4-5 दिन हो गए तुझे को शेव किए हुए। तो हमारे मित्र बोलते हैं, हाँ यार क्या है ना कि मेरा 10 रुपए का रुमाल खो गया था, मैंने सोचा कि 5 दिन शेव नहीं करूँगा तो मेरा कम से कम 10 रुपए बच जाएंगे। इतनी देर में मैं सामने से चला आ रहा था, तो मेरे मित्रों ने जब मुझे देखा तो देख करके हंसने लगे, लगता है खुर्शीद पागल जी का तो कंबल ही खो गया है। धन्यवाद धन्यवाद। आइए मैं आपकी मुलाकात एक बार्बर की दुकान से कराता हूँ। मेरा मतलब कि एक बार्बर से, तो नाई हैं और उन्हें दाढ़ी बाल मूछ सभी कुछ बनाना होता है। तो उसने रेट लिख करके टांगा हुआ है कि मिथुन कट 8 रुपए, संजय दत्त कट 10 रुपए, अमिताभ कट 12 रुपए। तो एक सज्जन आते हैं, उन्हें बाल कटाना था, उन्होंने लिस्ट नहीं देखा और बैठ गए कुर्सी पर। जब नाई जैसे बाल काटने को हुआ तो ये कस्टमर जो आए हुए थे इनको कुछ धुकधुकी सी हुई कि यार थोड़ा रेट पूछ लें। तो उसने नाई से पूछा, भाई साहब यार बाल काटने का रेट क्या है आपका? तो नाई ने कहा, भैया मेरे यहाँ आप मिथुन कट कटवाओगे तो 8 रुपया, संजय दत्त कटवाओगे तो 10 रुपया, अमिताभ कटवाओगे तो 12 रुपया लगेगा, कौन सा काटूं? वो सज्जन बड़े धीरे आवाज में मायूस होकर अपनी जेब में से 2 रुपये का नोट निकालते हुए कहते हैं,
मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपये है, ऐसा करो कि अनुपम खेर कट ही काट दो।
शुक्रिया शुक्रिया।